मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। योग दर्शन की 75वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद में यमों का विषय हमने पीछे देखा था। पांचों यमों का वर्णन करने के बाद में इन पांचों को पूरी तरह पालन करने का, अपवाद रहित, जाति देश काल समय से अनवच्छिन्न, सब भूमियों में रहने वाला उनका आचरण हो, ऐसा करने से इनकी परिपूर्णता होती है। और इसको महाव्रत की तरह से कहा गया। जब हम इतनी सूक्ष्मता से और पूर्णता से पालन करते हैं तो ये महाव्रत के रूप में हो जाते हैं। और जहां कुछ शिथिलता रहती है तो उतने अंश में तो पालन होता है, लेकिन वो महाव्रत नहीं कहा जाता, एक सीमा तक हम पालन करते हैं। यमों के प्रसंग में मैंने सत्य के बारे में महर्षि का एक वचन उद्धृत किया था, महर्षि दयानंद का, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त का 3रा मंत्र, जो अजितेंद्रिय भी तेरे सत्य भाषण आदि नियम पालन में निवास करता है उसमें कल्याण करने हारी सामर्थ्य बसती है और वह पुष्ट होता है। तो ये इस मंत्र के पदार्थ के अंदर लिखा हुआ है, हिंदी पदार्थ में, भावार्थ में नहीं है। उस दिन मैंने भावार्थ खोल दिया था। कल 31वां सूत्र हमने देखा था, उसके व्यास भाष्य में बीच में एक पंक्ति है जो कल रह गई थी, तीसरी पंक्ति है। तो जाति देश काल के बारे में बताने के बाद अब ये अगली बात को कह रहे हैं। सैव त्रिभिर उपरतस्य समयावच्छिन्ना देव ब्राह्मणार्थे न अन्यथा हनिष्यामि इति। तो सैव, सैव मतलब वही, वही अहिंसा, सा एव। यद्यपि सब पे लगेगा, ये सभी यमों पे लगेगा, लेकिन अहिंसा को केंद्रित करके यहां पर कहा गया। इसलिए त्रिभिर उपरतस्य, इन तीन से, तीन कौन, जाति देश काल से जो पृथक ना हो, उनसे, उनका पालन करके, क्योंकि तीन चीजें पहले बता चुके हैं, जाति देश और काल। तो ये जो यम है, जाति देश काल के अपवादों से जब युक्त होते हैं, यानी वहां बीच बीच में किए जाते हैं, और जब इन जाति देश काल में भी पूरी तरह से वहां से हट जाते हैं, हट जाते हैं मतलब यमों के विपरीत जो आचरण है उनसे हट जाते हैं, उपरत हो जाते हैं, सभी देश सभी जाति और सभी काल में इनसे हिंसा आदि विपरीत भावों से हट जाते हैं, तो ऐसा होने पर भी उसके बाद एक और चीज कही जा रही है, त्रिभिर उपरतस्य समय अनवच्छिन्न। सिद्धांत जो नियम किसी ने अपना अपना बना लिया है उससे भी, उसकी सीमा से भी वो रहित होनी चाहिए, उस ऐसा भी कोई नियम वहां पर नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसी वो कैसे, उसके लिए एक उदाहरण दिया था, दिया है यहां पर, देव ब्राह्मणार्थे, देव श्रेष्ठ व्यक्ति विद्वान व्यक्ति, उनके लिए ब्राह्मण के लिए, तो मैं हिंसा करूंगा, ना अन्यथा हनिष्यामि इति, और किसी तरह से और किसी के लिए हिंसा नहीं करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा हिंसा, यानी खाने के लिए या तो मांस खाने के लिए या और किसी तरह से, लेकिन देव और ब्राह्मण के लिए तो हिंसा कर दूंगा मैं, देव और ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी जगह मैं हिंसा नहीं करूंगा। ये किसी ने अपना नियम बना लिया, और जगह तो पालन कर रहा है लेकिन इन जगह पे जो इसने अवकाश रख लिया है, ये अपने समय के अनुसार उसने सिद्धांत के अनुसार ऐसा कर लिया है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, सभी के लिए, किसी के लिए भी हिंसा नहीं करूंगा, किसी के भी मांस को, कि कोई भी व्यक्ति मांस खाए उसके लिए मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कई बार हम जिनको अच्छा मानते हैं उनके लिए कुछ छूट रख लेते हैं अपने अपने लिए, अपने अंदर कार्यों में, जैसे कि कोई अपने घर में रहता है तो बिजली की चोरी नहीं करता है, वो ठीक ठीक लेता है, लेकिन कोई धार्मिक कार्य हो, कोई संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, तो उसमें या गांव में शहर में कभी कभी कार्यक्रम होते हैं, बिजली है नहीं तो वो वहां से तारों से सीधा लेकर के कार्यक्रम कर लेते हैं और उसमें दोष भी नहीं मानते, बोले तो धार्मिक कार्य के लिए भी, मैं अपने लिए थोड़ा ना कर रहा हूं, मैंने मीटर लगवा रखा है सब ठीक है, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए ले लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ये चोरी हो गई ऐसी। कोई मान लीजिए आरक्षण करवाता है, आरक्षण लेता है, उसमें रिश्वत नहीं देता है, लेकिन कोई सन्यासी आए हैं, कोई विद्वान आए हैं और उनके लिए आरक्षण करवा रहे हैं, मिल रहा नहीं है, तो ऐसे में वो रिश्वत दे करके या और जिस भी अन्यथा अनुचित तरीके से आरक्षण ले लेगा। अब उसको वो कहेगा भाई तो मैं उनके लिए ले रहा हूं, मेरे लिए थोड़ा ना ले रहा हूं। अब ये उनके अपने कुछ सिद्धांत बन गए हैं कि भाई इनको छोड़ करके वैसे नहीं करूंगा मैं, वैसे चोरी नहीं करूंगा, वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, इनके लिए तो करूं, वो भी नहीं होना चाहिए, वो छूट भी नहीं होनी चाहिए, तब ये महाव्रत के रूप में आते हैं। तो सही वह त्रिभिर उपरतस्य समयावच्छिन्न देव ब्राह्मणार्थे न अन्यथा हनिष्यामि इति, और आगे तो यथा च क्षत्रियाणाम, ये भी एक समय का सिद्धांत का उदाहरण दिया था, एक ये दिया था, एक ये दो उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। तो ये पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछ। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है तो योग का मूल हो ही गया, अंतिम स्थिति हो गई, समाधि की स्थिति हो गई। तो हमारी चित्त की वृत्तियां बिखरती क्यों हैं, इधर उधर क्यों जाती हैं, तो उसमें यम नियम के विपरीत आचरण भी कारण बनता है। उदाहरण के लिए हिंसा या अहिंसा को ले लें, एक व्यक्ति हिंसा करता है, दूसरे को मारता है, दंड वैसे ताड़न करता है, जान से मार दिया किसी को, और एक व्यक्ति ने किसी को मारा नहीं है, दोनों में से कौन सा व्यक्ति शांत रह सकता है और कौन सा व्यग्र और चिंतित रहेगा? तो वृत्तियों में अंतर आ गया, बहुत अधिक वृत्तियां इधर उधर होंगी उसकी, बहुत अधिक व्यग्र होगा, एक तो उसे डर लगेगा, बचना चाहेगा, औरों को पता लग गया तो क्या होगा, और उससे जो दंड मिलने की संभावना है, जेल जाना है, अपयश होना है, वो सब चीजें उसमें काम करेगी और वो बहुत प्रयास करके अपने को बचाने का प्रयास करेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसको, बहुत डर होगा और बार बार उसको वो विषय याद आएगा, वो शांति से बैठ नहीं सकता, वृत्ति निरोध नहीं होगा। जिसने किसी को कुछ किया नहीं है वो आराम से बैठता है, यही बात बाकी चीजों में भी लगा लीजिए, जिसने झूठ बोला है उसको बहुत सोचना पड़ता है, झूठ बोलने से पहले सोचना होता है और झूठ बोलने के बाद भी सोचना होता है, क्योंकि झूठ बोलने का लाभ तो तभी मिलेगा जब लोगों को पता ना लगे कि इसने झूठ बोला है, अगर पता लग गया तो क्या हुआ, झूठ बोला और लोगों को पता लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो क्या लाभ मिलेगा, लाभ भी नहीं मिलेगा और उल्टा हानि होगी। इसलिए झूठ बोलने के बाद भी व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, सोचता रहता है किस किस को कहा है, किसको क्या कहा है, कहीं विपरीत ना कह दूं, और उसको ध्यान भी नहीं, ध्यान रखना पड़ता है किसको मैंने क्या चीज कही है। बहुत सी ये सब वृत्तियों के अंदर नहीं आएगा। और जिसने सच्चे सत्य बोला है उसको क्या याद रखना पड़ता है, वो तो याद है ही उसको, ये घटना ऐसी हुई थी ऐसा ही बोल दिया, अब कोई भी पूछेगा वो बोल देगा। तो ये जब वितर्क होते हैं, ये हिंसा आदि होते हैं, तो हमारे को बहुत अधिक सोचना होता है, बहुत अधिक समय जाता है, वृत्तियां बिखरती हैं और एकाग्र शांत तो वो नहीं हो सकता, उद्विग्न रहेगा, भयभीत रहेगा, आशंकित रहेगा, संदेह की नजर से देखेगा, हर जगह पर उसको आशंका और डर रहेगा कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी बात खुल ना जाए, पता ना लग जाए, नहीं रह सकता। एक दृष्टि। दूसरा, अब जब औरों को पता लग गया, ये तो है पता ना लगे इसके लिए प्रयत्न करेगा वो, दूसरों को पता लग गया तो दूसरे भी प्रतिक्रिया करेंगे ना। हमने किसी के प्रति हिंसा की, किसी की के साथ झूठ बोला, किसी के साथ चोरी की, किसी के साथ व्यभिचार किया, परिग्रह किया, दूसरों से संबंधित कुछ जो भी है, उसको बहुत अधिक समय उसमें लगाना पड़ेगा। दूसरे कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, उससे बचने के लिए सोचना होगा, व्यवस्था करनी होगी, और दूसरा आकर के जब बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, हमारे को भी बदला ले रहा है, तब फिर होगा, ये सारी सारी चीजें होंगी ना। तो पहले बचने के लिए अपने आप में, दूसरों को पता नहीं हो तो भी, और जब दूसरे को पता लग गया तब वो स्थितियां बनती हैं, फिर ऐसा करने से वैसे संस्कार भी बन जाते हैं, उस तरह के संस्कार बनेंगे। कल्पना करें कि दूसरों को पता भी नहीं लगा और प्रतिक्रिया भी नहीं हुई और उसने चोरी कर ली, हिंसा कर दी, अब क्या होगा उसको, उस पर इसका एक संस्कार पड़ गया, गहरा संस्कार पड़ गया, क्योंकि वो आचरण में ले आया और उससे उसको कोई लाभ भी हुआ है, जिस उद्देश्य से उसने हत्या की, झूठ बोला, चोरी की इत्यादि, वो उसको लाभ हुआ है या हानि से बचा है, कुछ ना कुछ उसको अपना हित लग रहा है इसलिए उसने किया। अब संस्कार क्या पड़ा हुआ है कि मैं हिंसा करूंगा इससे ये लाभ हो जाता है, मेरे को संबंध जुड़ेगा ना, ऐसा सोच के उसने हिंसा की, उसमें वो सफल हो गया, तो उसको एक उपाय नजर आ गया, एक संस्कार पड़ गया, अगली बार वो उसी बुरे कर्म को करने में फिर प्रवृत्त होगा, जब स्थिति आएगी फिर प्रवृत्त होगा। पहली बार तो फिर अपेक्षा से अधिक डर भय रहता है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे उसकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, संस्कार बनते जाते हैं, उसकी प्रवृत्ति उधर अधिक अधिक होती चली जाएगी, सरलता से होती चली जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ी हानि होगी। और जब वो ऐसा जीवन बनाने लगा, इस तरह का जीवन चलने लगेगा, तो उसको वृत्तियां तो उभरेंगी, बहुत अधिक वृत्तियां उभरेंगी। तो इसलिए यम नियम का पालन करना वृत्ति निरोध के लिए मूलभूत चीज है, आधार है। कम से कम हम नए संस्कार तो ना डालें, जो नए बुरे संस्कार डल रहे हैं और उन संस्कारों से फिर वृत्तियां उठेंगी। अभी तक जीवन में हमने जितना भी यम नियम के विपरीत आचरण किया है वो समस्या खड़ी कर रहा है ना। आज हम करना कुछ चाहते हैं, विचार कुछ आ जाता है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पीछे हमने यम नियम के विपरीत आचरण किया है, उसके संस्कार पड़े हुए, वो उठ उठ के आएंगे, तो उनको भी क्षीण करना है, उसके लिए अलग प्रक्रियाएं हैं, वो भी हैं, लेकिन कम से कम नया कचरा तो नहीं डाले अंदर, नहीं तो ऐसा ही करते जाएंगे वो, फिर कचरा बढ़ता जाएगा, दुर्गंध आती जाएगी, समस्या बनी रहेगी, जो कि तो रोग आदि ये सब रहेगा, इसलिए उसको रोकना आवश्यक होता है। कोई ऐसी परिकल्पना करे कि मैं यम नियम के विपरीत आचरण करूं और मेरी एकाग्रता बन जाए, नहीं हो पाएगा। और यम नियम के विपरीत आचरण करेगा, उसकी नींद उड़ जाएगी, उसकी भूख मर जाएगी, वो शांति से सो भी नहीं सकता, वो खा भी नहीं सकता, और नींद और भूख दो चीजें अगर गड़बड़ हो गई, उसका दिमाग भी ढंग से काम नहीं करेगा, उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, अपने ही कामों को वो गलत ढंग से करने लगेगा, चूके होंगी उससे, बार बार गिरेगा, और कुछ समस्याएं आएंगी, अधिक उत्तेजित होगा, अधिक क्षुब्ध होगा, प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी, और फिर अव्यवस्थित व्यवहार दूसरों से होगा, फिर वही एक उलझन चक्र ऐसा चलेगा, एक गलत करने से गलत परिणाम और फिर विपरीत विपरीत स्थिति बनती चली जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए यम नियम का पालन आवश्यक है। प्रारंभ में व्यक्ति को लगेगा कि यम नियम का पालन कर रहे हैं तो इसमें तो और समस्या आ रही है, ये पालन करने में तो और सोचना पड़ रहा है, और कठिनाई आ रही है, जो पीछे आया था वृश्चिक दंश के समान लगता है, विषय भोगों का उससे बचना, अपने को संयम करना, परिणाम ताप संस्कार दुख उसके भाष्य के अंदर आया था, और वो सोचता है कि इसमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है, सच बोलने में तो बड़ा कष्ट हो रहा है, हिंसा ना करने में तो बहुत कष्ट हो रहा है, वो फिर उसके विपरीत आचरण कर लेता है, उसको सरल लगता है और उसमें सर्प से नसा जाता है, हानि कर लेता है, तो प्रारंभ में तो कष्ट होगा इसको। अगर कुछ भी सध गया है तो उसको अच्छा लगेगा, परिणाम तो अच्छा ही आने वाला है, लेकिन प्रारंभ में तो कष्ट प्रतीत होगा, क्योंकि वो पिछले संस्कार उसको क्षीण करेंगे, उधर खींचेंगे, उधर से रोकेंगे, गलत तरफ ले जाएंगे। उस समय अगर कोई कहे कि देखो इससे तो मेरे को और वृत्तियां उठने लग गई, भोजन में संयम करना है, एक तो है कि नियंत्रण में रहे, एक है कि खा लिया और छुट्टी की बस, और नहीं खाया तो वो दिन भर घूमेगा दिमाग में वो भोजन, जो नहीं किया है वो दिन भर घूमता रहेगा, बार बार याद आती रहेगी उसकी। भोजन में संयम रखा इससे वृत्तियां ज्यादा बढ़ गई, और खा लेते तो बस शांति थी उसी समय, क्या सोचना, ऐसा स्थूल चिंतन प्राय करके होता रहता है, प्रारंभ में ऐसा ही प्रतीत होगा, लेकिन वो प्रक्रिया है, हम जैसे ही भोगेंगे उस समय थोड़ी देर के लिए तो शांति प्रतीत होगी, और फिर आएगी, फिर संस्कार उठेगा, फिर और चाहिए, वृत्तियां रुकेंगी नहीं, असंयम की तरफ जाएंगे, वृत्तियां रुकने वाली नहीं है, बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, संयम कर रहे हैं तो शुरू में तो कष्ट होगा, उस समय ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो बहुत वृत्तियां उठ रही हैं, लेकिन उससे वो वृत्तियां क्षीण होने की तरफ जाती हैं। ऐसे ही है कि बहुत धूल हो, गंदगी हो, तो सफाई करेंगे तो थोड़ी तो धूल उड़ेगी ना, तो इससे अच्छा तो सफाई ना करना था, नाली को साफ करेंगे तो दुर्गंध आने लग जाती है, बोले इससे अच्छा तो ये तो सफाई कर रहे हो तो और ज्यादा दुर्गंध आ रही है, वैसा तो प्रारंभ में लगेगा लेकिन कुल मिलाकर के परिणाम अच्छा है। और यदि इसमें भी युक्ति पूर्वक किया जाए, सफाई युक्ति पूर्वक की जाए, ऐसे साधन हो, उपाय हो, तो धूल भी नहीं उड़ेगी और सफाई भी हो जाएगी, लेकिन अगर उड़ रही है तो भी उड़ रही है कोई बात नहीं, हमें पता है कि उसका उपचार करेंगे और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये तो थोड़ी देर में धूल सब ठहर जाएगी, सफाई हो जाएगी। तो ऐसा ही यम नियम के बारे में भी है, इसके विपरीत आचरण करते हैं वृत्ति उठेगी, अधिक अधिक बनेगी, और इसका पालन करते हैं तो वृत्तियां शांत हो जाएंगी। तो ये चित्तवृत्ति निरोध में सहायक बनते हैं, आधार बनते हैं। ठीक है, आगे तो अब आगे 32वां सूत्र, तो नियम के बारे में इस सूत्र में गिनाया, पांच नियम गिनाए हैं, जैसे यहां पांच यम गिनाए थे ऐसे ही पांच नियम गिनाए हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। सूत्रकार ने केवल नाम गिनाए इनके, शौच यानी शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। इनमें से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के बारे में द्वितीय पाद के प्रारंभ में क्रिया योग के प्रसंग में चर्चा की गई, सूत्र भी है, भाष्य भी है, और हम लोगों ने भी काफी उस पर विचार किया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का, वही बात यहां पर है। इन पांचों के बारे में व्यास जी ने कुछ कुछ आगे विवरण दिया है, खोला है इसको, इनके लक्षण दिए। तो पहले शौच के बारे में कहते हैं, शौच का मतलब शुद्धि होता है, तत्र शौचम मृत जलादि जनितम, मृत यानी मिट्टी और जल, और जल आदि और भी दूसरी चीजें हैं, उनसे जो उत्पन्न होता है, ये एक तरह का, बाहर जो हम शुद्धि करते हैं, शुद्धि को दो रूप में बताया, एक बाहर की शुद्धि और एक अंदर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि के भी दो भाग किए हैं, एक वो अशुद्धि जैसे कि हमारे प्रतिदिन पसीना आदि आता है और मल मूत्र होते हैं, वस्त्र गंदे होते हैं, मकान इत्यादि जो भी चीजें मलिन होती हैं उनको हम जल से धोते हैं, जल के साथ साथ कुछ जो भी साबुन फेनिल आदि काम में लेते हैं वो आ जाएगा। मिट्टी से भी हम नहाते हैं, हाथ भी धोते हैं, पहले मिट्टी से धोया करते थे, वो भी एक शुद्धि का प्रकार है, उसमें भी क्षार होता है उससे शुद्धि होती है। तो ये शुद्धि ये भी इसके अंतर्गत है। तो मृत जलादि जनितम, मिट्टी और जलादि से जो भी शुद्धि होती है एक तो ये इसमें आएगी, इसका भी हमें पालन करना है, उस अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और दूसरों की दृष्टि से भी अच्छा है। मलिनता होने पे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और शरीर से दुर्गंध भी आएगी, अन्यों को बाधा होगी, तो ये एक शुद्धि का भाव है। और उस शुद्धि में भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग की शुद्धि रखता है। कई व्यक्ति बहुत अधिक जल का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक साबुन का प्रयोग करते हैं, बहुत तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक जीवाणुनाशक उससे पोछा लगाते हैं। एक व्यक्ति घर में केवल झाड़ू लगाते हैं, एक झाड़ू और पोछा दोनों लगाते हैं, एक उसके साथ साथ जो और औषधियां फिनाइल आदि और भी कुछ आते हैं जिससे कीड़े मकोड़े ठहरे ही नहीं, वहां पर मक्खी मच्छर आवे ही नहीं, बैठे ही नहीं, बैठते ही तो मर जाएं इत्यादि, वो बहुत सारी कुछ चीजें आजकल की जाती हैं। कुछ उसमें फिर सुगंधित चीजें भी डाल देते हैं, अच्छा लगे, सुगंध अच्छा लगे इत्यादि। तो बहुत अधिक उसमें हम जाएंगे तो इसी में हमारा बहुत समय चला जाएगा, इतना कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे उसमें बाधा नहीं आए और दूसरों को भी प्रतिकूलता ना हो, इतनी शुद्धि। और शरीर की शुद्धि हो गई, मुख की शुद्धि हो गई, बालों की शुद्धि, वस्त्र की इत्यादि, ये उतनी सीमा तक रखना चाहिए। बहुत अधिक चले जाएंगे वो उतना अधिक हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है। शरीर अपने आप भी कुछ अपनी व्यवस्था करता है, रोग आदि से बचाता है। तो पहला कहा शौचम मृत जलादि जनितम, फिर दूसरा इसी में कहा मेध्य अभ्यवहरण आदि च बाह्यम। मेध्य अभ्यवहरण, मेध्य मतलब जो मेधा के लिए हितकर हो, बुद्धि के लिए हितकर हो। अभ्यवहरण कहते हैं खाने को, ऐसी चीजें खाना जो बुद्धि के लिए हितकर हो, ये भी शौच के अंदर का आया है। क्योंकि इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं का सेवन जो बुद्धि के लिए अहितकर हो, मेधा के लिए अहितकर हो, तो उसे मलिनता आएगी, बुद्धि मलिन होगी, शरीर मलिन होगा, रोग पैदा होंगे। इसमें जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका निषेध भी हो गया, क्योंकि मादक पदार्थ बुद्धि के लिए हितकर नहीं होते हैं, बुद्धि के लिए हानिकारक होते हैं, हमारा नियंत्रण खो देते हैं, संयम खो देते हैं, कुछ भी अनर्थ हो जाता है, संतुलन खो जाता है, बुद्धि नियंत्रण करती है शरीर का वो छूट जाता है इत्यादि। तो जो बुद्धि के लिए हानिकारक हैं वो सारी चीजें मादक पदार्थ। बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, मदकारी मद को पैदा करने वाला मादक पदार्थ हम बोलते ही हैं। किनको मदकारी बोलते हैं? बुद्धिम लुम्पति, जो बुद्धि का लोप कर देता है, हरण कर देता है। यह द्रव्यम, जो भी द्रव्य है हमारी बुद्धि का हरण करता है, चेतना का हरण करता है, यानी हमारी समझ को कम कर देता है, हमारी जागरूकता को कम कर देता है, वो मदकारी कहे जाते हैं। वो मेधा के लिए बुद्धि के लिए हितकर नहीं होते, उनसे हमें बचना है। ये भी इसी के अंतर्गत आएगा शौच के अंदर। और ये दोनों चीजें मिट्टी जल आदि पदार्थों से शुद्धि करना और ये मेध्य पदार्थ का सेवन करना, ये दोनों बाह्य शौच के अंतर्गत लिए हैं। बाहर से हम लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं इत्यादि, बाह्य शौच के अंदर के। पांच जो नियम है इसमें अंतिम एक ईश्वर प्रणिधान दिया हुआ है। तो यम और नियमों का उल्लेख अन्य मत संप्रदायों में भी मिलता है, बौद्धों में भी मिलता है, पंचशील, उसके अलावा ये पांच चीजें भी जो यहां पर गिनाई है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय, ये भी है वहां पर। उसमें ईश्वर प्रणिधान नहीं है क्योंकि ईश्वर को मानते नहीं है। तो उसकी जगह पे पांचवां उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन का निषेध ये लिया हुआ है पांचवां। तो एक बार एक उनके शिक्षक हैं, दार्शनिक हैं, अजमेर में ही रहते हैं, वो कहने लगे, वो आलोचना पे आए हुए थे पतंजलि योग दर्शन की, प्राय होता ही रहता है ये सारा का सारा। तो कहने लगे कि देखो, यहां हमारे यहां पर नशे को न लेना, मादक पदार्थों का न लेना ये लिखा हुआ है, और योग दर्शन में तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये भले ही खाते पीते रहें, इनका सेवन करते रहें, इसकी तरह ये भी तो होना चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज समाज कितना इसकी तरफ जा रहा है नशे आदि से, उससे बचेगा तो साधना करेगा, तो ये तो होना चाहिए था, इन्होंने नहीं कर रखा है। तो उन्होंने तो ईश्वर परिधान उनको स्वीकार्य नहीं है, ये तो कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भाई आपने ईश्वर परिधान नहीं ले रखा। बोले ईश्वर ईश्वर तो काल्पनिक चीजें हैं, उसको तो छोड़ो, लेकिन ये तो होना चाहिए, तो व्यवहार की बात है हमारी। तो उनको उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है कि जिस नशे की पदार्थों का आप निषेध कर रहे हो, उस पर पतंजलि या योग दर्शन में उसका समर्थन नहीं किया गया है, ये नशे की चीजें ले सकते हैं, पहली बात तो कहीं ऐसा नहीं है, और आप कह रहे हो कि निषेध नहीं किया गया, तो निषेध भी किया गया है इसमें, व्यास जी ने लिखा है, सूत्र में नहीं आया है वो, लेकिन शौच की व्याख्या व्यास जी ने की है, उस परंपरा का भाष्य है ये, उस भाष्य के अनुरूप हम देते हैं, उस परंपरा में यही अर्थ लिया जाता है। शौच के अंदर मेध्य पदार्थों को खाना, इससे पता लगता है अमेध्य पदार्थों का, मादक पदार्थों का निषेध यहां किया गया है। कई बार ऐसे ऐसे आरोप आ जाते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, सूत्र से देखते हैं, अंदर का उनको पूरा पता नहीं होता है, उनको तो आलोचना करनी है किसी भी तरह से, उसको नीचा दिखाना है, हे दिखाना है, वो प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसी समालोचनाओं में अगर इस ये समालोचना हो, तो हम ये मेध्य अभ्यवहारण वाली बात को कह सकते हैं। तो ये तो हुआ बाह्य शौच। दूसरा आभ्यंतर शौच, आभ्यंतरम चित्तमलानाम आक्षालनम, चित्त के मन के जो मल हैं उनका आक्षालन, उनका क्षालन कहते हैं सफाई करना, आक्षालन पूरी तरह से उसको हटाना, अच्छी तरह से उनको हटाना। तो बाहर की शुद्धि और अंदर की, मन की शुद्धि, मन का मैल, चित्त का मैल, चित्त की गंदगी, उसको हटाना, ये भी शौच के अंतर्गत आता है। जो प्रक्रिया हमने क्रिया योग में देखी थी, उसमें भी चित्त को शुद्ध करने की बात कही गई थी, उसमें तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान के माध्यम से किया गया था। तो यहां ये ध्यान रखना कि मुझे अंतःकरण को शुद्ध करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, नियंत्रित करना है, अधर्म से हटाना है, संस्कारों को ठीक करना है, और उसके लिए प्रयत्न करना, ये भी शौच के अंतर्गत आता है। तो बाहर का शौच और अंदर का शौच, ये पहला नियम हुआ। ये नियम है जैसा पहले भी मैंने आपके सामने रखा, ये व्यक्ति से खुद में स्वयं से संबंधित अधिक है, व्यक्तिगत है, यम समाज से संबंधित अधिक है। वैसे दोनों का दोनों से संबंध जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकता की दृष्टि से नियम व्यक्ति से अधिक जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी व्याख्या करते हुए कहा जाता है, नियम में कहा जाता है, नियम्यन्ते कर्तव्यतया बुद्धौ निश्चीयन्ते इति नियमाः। नियम्यन्ते, नियम्यन्ते को खोला, कर्तव्यतया बुद्धौ निश्चीयन्ते, कर्तव्य की दृष्टि से मुझे ये करना चाहिए, इस तरह बुद्धि में जिनका निश्चय किया जाता है मुझे ये पालन करना है, उनको नियम कहा गया। शौच उसके आगे है संतोष। तोष मतलब, तोष कहते हैं तुष्टि, तुष्ट हो गया। आशुतोष नाम सुना, किनको कहा जाता है आशुतोष? शंकर भगवान को, शिव जी को आशुतोष नाम उनका दिया जाता है। क्यों है आशुतोष? आशु मतलब शीघ्र, जल्दी से, तो जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, आशुतोष। ये संतोष अच्छी तरह से सम्यक रूप से तुष्ट हो जाना, ये संतोष, संतुष्टि होना, संतोष। तो क्या है संतोष? उसकी व्याख्या की, सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादितसा। सन्निहित साधनात्, सन्निहित मतलब जो हमारे पास में है, सन्निहित सम्यक रूप से निहित है हमारे पास में, जित जो चीजें हमारे पास में, जैसा हमारा घर है, जैसे हमारे कपड़े हैं, जैसे गाड़ियां हैं, जैसे खान पान की चीजें हैं, जैसा हमारा परिवार है, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, जैसे बच्चे हैं, जो भी, जैसी नौकरी है, जैसा यश है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, सब चीजें द्रव्य खासतौर से वस्तुओं के लिए, सन्निहित साधना साधनों से, साधन मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं उपकरण। अब इसमें हमारे शरीर की भी चीजें आ जाएंगी, शरीर के जो हमारे हाथ पैर आदि हैं, साधन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, सभी चीजें आ जाएंगी। तो शरीर वाले साधन और बाहर वाले साधन, जो साधन हमारे पास सन्निहित, सन्निहित साधन से, सन्निहित साधनार्थ अधिकस्य उससे अधिक की अनुपादित सा, उसको प्राप्त करने की इच्छा ना होना, जितने साधन हमारे पास में हैं उससे अधिक की इच्छा ना होना, इसको संतोष कहेंगे। वे जितना धन है ठीक है, आज मेरी थाली में जो आया है जितना आ गया, आज जैसी भी रोटी आ गई, सूखी आ गई तो सूखी, एक सब्जी है तो एक सब्जी है, बिना उसके है तो जैसे भी है, जो आ गया बिना मिठाई के आ गया, बिना अचार के आ गया, जो है ठीक है, उसमें संतोष। जैसे कपड़े हैं अपने पास, उसको पहना और उसमें संतुष्ट रहना, नहीं तो एक भाव मन में बना रहता है, कपड़े तो पहने हैं, अब यूं तो अच्छे भी हैं, औरों के उनसे भी खराब होते हैं, लेकिन किसी किसी के बहुत अच्छे होते हैं, तो मन में भाव है अरे मेरे तो कपड़े उतने अच्छे नहीं है, अब एक मन में दुख का भाव है बना रहता है, अरे मेरे पास तो, मेरे तो खाना मेरे पास उतना अच्छा नहीं, अरे मेरी तो गाड़ी वैसी नहीं है जैसी उसने कल्पना कर रखी है कि ऐसी हो ऐसी हो, ऐसा ही परिवार के लिए, ऐसा ही अपने शरीर के लिए कि अरे मेरा तो शरीर ऐसा नहीं है, मेरा तो रंग ऐसा नहीं है, मेरा तो रूप ऐसा नहीं है, मेरी तो इंद्रिय ऐसी नहीं है, मेरी तो बुद्धि ऐसी नहीं है, ये एक दुख का भाव, खेद का भाव मन में बना रहता है, अलग अलग विषयों में, किसी को किसी में, किसी को किसी में, मन में खेद बना रहता है, खिन्नता बनी रहती है, असंतुष्टि बनी रहती है, ये बना रहना, अरे मेरे पास तो यही, मेरे पास तो यही है, ये असंतोष कहलाता है। और जैसा है, जैसा शरीर मिला, जैसा परिवार मिला, जैसा धन है, अपने प्रयत्न के बाद, पूरे प्रयत्न के बाद, ये संतोष का ये अभिप्राय नहीं है कि हम प्रयत्न नहीं करेंगे, उस अर्थ में नहीं ले जाना कि भाई हमारे पास जितना धन है अब और कमाने का प्रयास ही नहीं करना है, ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। अभी जब हम उपयोग कर रहे हैं उसमें एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए, कम है ठीक है उसमें भी संतुष्ट है, हाँ अधिक प्राप्त करना चाहिए वो असंतोष नहीं है, असंतोष क्या, अधिक प्राप्त करना चाह रहा है और जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, उसमें दुख है, अंदर खेद है, परेशान है, लाखों करोड़ों रुपए होते हुए भी बोले मेरे पास तो इतना ही है और दुखी हो रहा है वो, ठीक है लाख करोड़ है, आप एक अरब कमाना चाहते हो तो कमाओ, धर्मपूर्वक जो कर सकते हो तो कर लो, अच्छी गाड़ी लेनी है तो ले लो, अपरिग्रह का पालन करते हुए। तो पुरुषार्थ करके और अधिक वस्तुओं को पाने का निषेध नहीं किया जा रहा है यहां पर, जितना है, कम है अधिक है उसमें संतुष्ट रहना, ये संतोष है। एक जो वचन कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, जितने कर्म करना है कर ले, अधिक से अधिक करना है कर ले, जो भी धन कमाना है, उन्नति करनी है, शरीर अच्छा बनाना है, बुद्धि अच्छी बनानी है, यश अच्छा करना है, जो करना है कर ले, उसमें अधिकार है तेरा, जितना चाहे कर ले, जितना कर सकता है कर ले, मां फलेषु कदाचन, लेकिन उस कर्म करने के बाद में जो फल मिला है उसमें ये अधिकार ना करे, ये भावना कि नहीं इतना तो होना ही चाहिए था, इतना तो होना ही चाहिए था, और जो है उसमें बोले ये तो कम है। साधक व्यक्ति अगर किसी चीज की कमी भी अनुभव करता है, ये तो वास्तविकता है, वो तो रहेगा कि भाई आज मेरे को रोटी कम मिली, अचार मिलनी चाहिए थी आज दो ही मिली है, जैसी चाहता हूं वैसी नहीं मिली है, ये तो ज्ञान हो गई, इसमें कोई दोष नहीं है, पता है कि भाई ऐसा चाहिए ये नहीं है, ये सब्जी मेरे को अनुकूल है वो नहीं है, ये विपरीत है वो आज आ गई सामने, और ठीक है ये तो बोध होगा ही। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो उसको भी ये सोच करके खाते ही चले जाएं, कभी कभी होता है, लेकिन अगर रोग है तो उससे बचना, ये संतोष का ये मतलब नहीं है, स्वास्थ्य को तो ठीक रखना ही है। लेकिन किसी भी परिस्थिति से जो भोजन या जो सब्जी आ गई, पता लग रहा है कि कम है, इससे असंतोष नहीं हुआ, लेकिन जो आई उसे खाली कोई बात नहीं, आज इतना ही से, ये अब संतोष का भाव है। तो संतोष रखने का ये अर्थ नहीं है कि हमें कोई किसी चीज की कमी अनुभव ना हो, कमी तो जो है होगी, पानी कम है तो है, पता लग रहा है कि पानी है कम है, आज पानी नहीं है तो आवश्यकता है, लेकिन पानी कम हुआ तो उतने में अपना काम चला लिया और मन में खिन्नता नहीं आने दी, तुष्ट रहे, संतुष्ट रहे, यही संतोष। जितना हमारे पास में है सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादितसा, ये संतोष है। नहीं तो संतोष को हम दूसरे ढंग से देखते हैं, कोई व्यक्ति यदि प्रगति के लिए प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो धन के लिए कर रहा हो, चाहे यश के लिए कर रहा हो, पद प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए कर रहा हो, और एक व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, ये प्रयत्न कर रहा है, ये जो भागदौड़ कर रहा है वो क्या है, ये असंतुष्ट है। वो संतुष्ट होता तो प्रयत्न नहीं करता। सामान्यतया संतोष को ऐसे ही तो समझते हैं कि प्रयत्न के लिए प्रयत्न कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मतलब इसको संतोष नहीं है, ऐसा नहीं। आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तो लोक में चाहे कुछ भी कहा जाता हो, वैदिक दृष्टि नहीं है, योग की दृष्टि नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी दृष्टि मानते हैं तो उसके साथ साथ ये वितर्क आता है, और आधुनिक लोग ये कहते ही हैं बहुत, बोले जी संतोष करेंगे तो फिर प्रगति कहां होगी, देश की प्रगति क्या होगी, संसार की प्रगति क्या होगी, जैसा है वैसे ही संतुष्ट हो जाते ना, इस संतोष के कारण ही तो हम पिछड़े रह गए, भारत इतना पिछड़ा रह गया, ठीक है जो है वो है। संतोष का ये गलत स्वरूप समझ लिया इसलिए पिछड़े रह गए, संतोष ये नहीं है। शब्द तो यही कहेंगे, सन्निहित साधनों से अधिक की इच्छा न करना, उसका क्या मतलब है कि उससे संतुष्ट रहना, संतोष शब्द ये कह रहे हैं, ठीक है जितना है उतना है, लेकिन प्रगति न करना उसका निषेध नहीं है, वो तो करना ही है, प्रयत्न करना ही है। हमारे यहां पर अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की वृद्धि, प्राप्त का रक्षण, रक्षित की वृद्धि, वो क्षय न हो, ये सब प्रयत्न है, उचित है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। लेकिन यहां पर दो चीजें साथ में काम करती हैं, एक अपरिग्रह और एक संतोष। हम संतोष की ऐसी व्याख्या कर लेते हैं जो कि अपरिग्रही कहलाती है, दोनों में अंतर है, दो अलग अलग चीजें पढ़ी गई हैं, नहीं तो एक ही हो जाते हैं। अब सामान्यतः जो हम व्यवहार करते हैं उसमें अपरिग्रह और संतोष को घुला मिला करके देखते हैं, उसका अलग नहीं कर पाते। संतोष मतलब जितनी चीजें हैं उतनी, थोड़ी सी में काम चला लेना, संतोष का मतलब थोड़ी में काम चला लेना। अपरिग्रह में भी वही कहेंगे भाई अधिक इकट्ठा ना करना, जो थोड़ा सा है उसी में संतुष्ट रहना। तो अपरिग्रह के साथ साथ संतोष जुड़ा हुआ रहता है, आपस में संबंधित हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। संतोष की बात तो अभी आपके सामने रखी है, अपरिग्रह का भी जिस समय प्रसंग आया था पीछे, तो उसमें एक तो था अर्जन रक्षण क्षय संग और हिंसा दोष देख करके उनका अस्वीकार कर देना, नहीं लेना उसको, नहीं भोगना उसको, दे देना उसको दूसरों को, अधिक हो गया है दे देना अच्छे कार्यों के लिए, अथवा आवश्यक नहीं है और देना भी नहीं है तो स्वीकार ही नहीं करना, लेना ही नहीं। संतोष में यह नहीं कहा जा रहा कि हमें थोड़ा ही रखना है, सन्निहित साधनों से अधिक की इच्छा ना करना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना। अब किसी के पास 1,000 रुपया है, अब किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, तो सन्निहित साधन तो दोनों के लिए लागू होगा, उसके पास 1 करोड़ है, उसके पास 1 लाख है, उसके पास 1,000 है, जिसके जिसके पास जितना है। सन्निहित साधन में कोई सीमा थोड़ा निर्धारित की गई है कि कम हो या अधिक हो, जितना है। 5 जोड़ी कपड़े हैं तो 100 जोड़ी कपड़े हैं, उस 100 जोड़ी कपड़े लेकर के भी वो संतुष्ट हो जाए कि 100 जोड़ी है मेरे पास में, मेरे पास इतनी जमीन है, इतना मकान है, गाड़ी है, इतने सब कुछ है, उसमें प्रसन्नता का भाव है, मेरे पास ये है, ये चीजें हैं और मैं इसका ये उपयोग कर रहा हूं, खिन्नता नहीं रहे, तो 5 जोड़ी में भी हो सकती है, 100 जोड़ी में भी हो सकती है। तो संतोष का ये अर्थ नहीं है कि चीजें कम हो, वो चीजें कम हो उसका संबंध है अपरिग्रह से, कम करता है चीजों को, उपभोग को कम करता है, नहीं इसमें दोष है, मैं इसको कम करूंगा, इसमें संतोष में कम नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि यम और नियमों में यम मुख्य होता है, यम महत्वपूर्ण होता है, नियम कम है। अब यहां देखिए अपरिग्रह और संतोष में, अपरिग्रह वाला तो कम ही लेता है, वो अधिक तपस्या है, वो अधिक बड़ा व्रत है अपरिग्रह, और ज्ञान के स्तर पर भी वो बड़ा है, क्योंकि वो अर्जन रक्षण क्षय संग और हिंसा दोष देख रहा है, ये विवेक पूर्वक कर रहा है। संतोष में तो सीधा बस मेरे को अच्छा लगे, बस इतना, परेशान ना हो इसके लिए, इतनी धन संपत्ति करके भी लोग कहते ही है ना, इतना सब कुछ है तो भी हाय 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 हाय, मतलब वो दुख का प्रतीक है, ये नहीं है वो नहीं है, भिकमंगे बने हुए हैं अभी भी, दुखी होते जा रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, इतना करके भी हाय हाय ही है वो, हाय हाय मतलब तो अंदर से दुख निकल रहा है, क्रंदन निकल रहा है, अरे ये नहीं है वो नहीं है, वो हाय हाय नहीं हो, जितना है ठीक है। अब ये अधिक भी ले सकता है, अपरिग्रह वाला अधिक नहीं लेगा, ये अधिक लेकर के भी संतुष्ट हो सकता है, इसके लिए रास्ता खुला हुआ है संतोष का जो पालन कर रहा है। दोनों होने चाहिए, योगी के लिए दोनों होने चाहिए, लेकिन अगर यम और नियम में तुलना करें तो संतोष की बजाय अपरिग्रह अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक श्रम साध्य है, अधिक लाभदायक है। संतोष तो मानसिक रूप से तो ठीक है, तो अपरिग्रह और संतोष में यह भेद है। तो सन्निहित साधनात अधिकस्य अनुपात इच्छा, अधिक की इच्छा नहीं करना, प्रयत्न तो करना है, उसका निषेध यहां पर नहीं स्वीकार किया, प्रयत्न तो करना है। आगे तप, तीसरा नियम, तो तपो द्वंद्व सहनम, तप का मतलब है द्वंद्वों का सहन करना, द्वंद्व का मतलब दो के बीच में जो होता है, दो का जोड़ा जो होता है उसको द्वंद्व बोलते हैं। अब प्राय करके विपरीत चीजें होती हैं, एक छोरिए, ऐसे वो दो चीजें हो जाती हैं, इससे द्वंद्वों का सहन करना, एक सामान्य शब्द ले लिया इनके लिए। वो द्वंद्व कैसे हैं तो कुछ बताया आगे, द्वंद्वश्च जिगत्सा पिपासे, जिगत्सा कहते हैं खाने की इच्छा, भोजन की इच्छा, और पिपासा पीने की इच्छा, भूख और प्यास, ये दो द्वंद्व के ना साथ में रहते हैं ना, भूख प्यास, इसको सहन करना, द्वंद्वों का सहन करना ही नहीं, भूख और प्यास को सहन करना, वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, न्यूनाधिकता जीवन में आती रहती है, इससे तप होता है। दूसरा कहा शीतोष्ण, ठंडी और गर्मी, ये भी दो द्वंद्व हैं, साथ ही साथ में जुड़े हुए हैं ये, तो कभी ठंडी को भी सहन करना होता है, कभी गर्मी को भी सहन करना होता है, ये भी एक तप है, सर्दी गर्मी को सहन करना। स्थान आसने, खड़े रहना या बैठना, ये भी एक, दोनों जुड़ी हुई चीजें, खड़ा हुआ और बैठा रहना, तो कभी केवल खड़े रहना होता है तो वो भी तप है, यात्रा में कभी खड़ा रहना होता है स्थिति है, अथवा और कहीं खड़ा रहना होता है, कहीं बैठना होता है तो बैठे बैठे भी तो परेशान हो जाते हैं, अब उठ नहीं सकते वहां पर, कई जगह सभा में और कहीं बैठे हैं तो वो लंबी सभा चल रही है तो उठ नहीं सकते बीच में, वो कष्ट भी हो रहा है तो भी बैठे हैं, कई जगह पे हो सकता है, वो वाहनों में भी हो सकता है, सभा में हो सकता है, कहीं भी कोई स्थितियां ऐसी होती है वे उठ नहीं सकते, तो स्थान और आसन ये हो गए। काष्ठ मौन आकार मौने च, दो प्रकार के मौन कहे, एक काष्ठ मौन एक आकार मौन। काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह से हो जाना। लकड़ी की तरह से हो जाने का मतलब है मौन, वैसे हम वाणी से मानते हैं, वाणी से कुछ ना बोलना ये मौन है, लेकिन जब मौन करते हैं यानी बोल करके हम अपनी बात को कहते हैं, और हम हाव भाव से भी अपनी बात को कहते हैं, संकेतों से कर देते हैं, हाथ से संकेत कर दिया, नेत्र से कर दिया, मुख से कर दिया, या लिख करके भी दे देते हैं, तो ये जो दूसरे संकेत हैं इनको भी ना करना। किसी ने अभिवादन किया है तो उसका भी कोई उत्तर नहीं, पहली बात तो बाहर जाएगा नहीं और होगा तो भी कुछ नहीं। भोजन के लिए बैठे हैं, भोजन परोसने वाले आए, रोटी चाहिए, कुछ नहीं, बोलना नहीं है, देखिए भाई एक रोटी चाहिए, दो चाहिए, हाथ का संकेत है या नहीं चाहिए, ये भी कुछ नहीं करना है। तो व्यवहार कैसे चलेगा, तो पहले से बता देते हैं, पहले से बता देते हैं कि भाई इतना इतना मेरे को देना है। अब उसमें ऊंच नीच भी हो गई, हो गई तो कुछ नहीं बोलना है, संकेत नहीं करना है, व्यवस्था ऐसी कर लेते हैं कि बोलना ना पड़े, संकेत ना करना पड़े किसी से भी, दूसरे के चेहरे को भी नहीं देखते हैं, उनके हाव भाव नहीं देखते हैं, उनको सुनते भी नहीं है, कुछ नहीं हुए, कुछ सुन भी लिया, कोई बात आ गई तो चुप एकदम रहते हैं, इसको कहते हैं काष्ठ मौन, लकड़ी की तरह से। और आकार मौन जो सामान्य मौन, हम बोलते नहीं है, उतना मौन है बस, उसमें हम कई संकेत कर लेते हैं, लिख करके भी कर लेते हैं इत्यादि, तो काष्ठ मौन और आकार मौन। और कई जने बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं, अदर्शन मौन, कि किसी को देखते ही नहीं है और उनको भी कोई नहीं देखता है, ऐसे कक्ष में गुफा में चले जाते हैं, वो भी लिया जा सकता है। तो ये मौन का पालन, ये भी तप है, इससे अंदर हमारा तपन होता है इन सब चीजों से। जब जब हम इन विपरीत स्थितियों में जाते हैं तो अंदर संयम सतता है, ये तप के अंतर्गत आते हैं। और कुछ तप के लिए कहा, व्रतानि चैषाम यथा योग्यम कृच्छ्र चांद्रायण सांतपनादिनी। और कुछ व्रत भी हैं वो भी तप के अंतर्गत आते हैं, कुछ नियम ऐसे लिए खाने पीने के, यथा योगम, यथा योग मतलब जिसको जैसा योग्य होता है, जैसा जिसका शरीर है, सब व्रत सब नहीं कर सकते, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अवस्था को देखते हुए, जो जैसा कर पाए, शरीर को हानि नहीं हो, ये यथा योग का मतलब होता है। अबाधमान हो, तो तप के लिए जैसा क्रिया योग में कहा गया था कि ये जो तप कितना होना चाहिए, चित्त की प्रसन्नता को बाधित नहीं करे। अब शरीर रुग्ण हो जाएगा तो चित्त की प्रसन्नता बाधित होगी, उस सीमा में नहीं जाना है, अति नहीं करनी है। तो यथा योगम कृच्छ्र चांद्रायण सांतपनादिनी, ये व्रतों के नाम दिए, कृच्छ्र व्रत, चांद्रायण व्रत और सांतम सांतपन। कुछ लोग कृच्छ्र शब्द को दोनों के साथ में जोड़ते हैं, चांद्रायण और सांतपन दोनों के दो रूप में इसको मानते हैं। इन व्रतों के अंदर कृच्छ्र व्रत, उसके लिए ऐसा जो वर्णन मिलते हैं, यहां तो नहीं खोला गया है, तो 3 दिन तक, 12 दिन तक चलता है ये कृच्छ्र व्रत। उसमें से प्रथम 3 दिन प्रातः काल ही कुछ भोजन लिया जाता है, उसमें उसके कौर यानी ग्रास की मात्रा निश्चित होती है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है इतना लगभग एक ग्रास, एक गस्सा माना जाता है, कौर माना जाता है। और वो ऐसे छोटे छोटे ग्रास 26 ले सकता है, 26 ग्रास प्रातःकाल, और फिर दिन भर कुछ नहीं खाना है एक ही बार। ये 3 दिन हो गए, अगले 3 दिन केवल सायंकाल लेगा, उसके लिए 32 कौर का, 32 ग्रास का विधान किया गया, उससे ज्यादा नहीं लेगा, कम ठीक है, कम लेता हो तो नहीं खाया जाता हो तो कम खाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ये भी बहुत हो जाते हैं, छोटे शरीर का है, कम आयु का है, अवस्था ऐसी है तो कम भी ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और 3 दिन सायंकाल लेता है, फिर उसके बाद में 3 दिन दिन में कभी भी 24 कौर लेता है, पहले 26 कहे थे, फिर 32 कहे, फिर 24 कहे, वो एक दिन में एक बार लेना है बस 24 कोर, और उसके बाद 3 दिन कुछ भी नहीं लेना है, उपवास करना है। ऐसा करके ये कृच्छ्र व्रत के नाम से कहा गया है, 12 दिन का हुआ। दूसरा चांद्रायण व्रत है, वो चांद्रायण व्रत चंद्रमा के अनुसार से चला, चंद्रमा का जो अयन होता है, चंद्रमा की जो गति होती है, फेरा जहां से चला था वहीं वापस आ जाता है, पूरा एक चक्र है चंद्रमा का, वो एक महीने का 28 दिन का या 29 30 दिन का मानिए। तो एक एक ग्रास को कम कर दिया जाता है, एक एक अंश को। अब हम जितना भोजन करते हैं उसके 15 भाग मान लिए, तो जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा गई हमने पूरा भोजन किया जितना हम भोजन करते हैं, अब प्रतिपदा आई, अब कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, तो प्रतिपदा के दिन चंद्रमा का एक अंश कम हो जाता है, 15वां भाग या 14वां भाग कह लीजिए, एक कला कम हो जाती है। ऐसे ही अपने भोजन का एक भाग कम कर देना, 15 या 14 में से जितना एक भाग है उतना कम कर देना। ऐसे फिर द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, अब कृष्ण पक्ष की पंचमी आई है, इसका मतलब है 5 अंश उसके कम हो चुके हैं, ऐसे वो भी करता चला जाएगा। और करते करते मान लो त्रयोदशी चतुर्दशी, तो त्रयोदशी को 13 अंश कम कर देगा, केवल 1-2 अंश ही लेगा, चतुर्दशी को 14 अंश कम कर देगा, केवल 1 ही अंश कम लेगा, और फिर कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन यानी अमावस्या, उस दिन चंद्रमा की एक भी कला नहीं है तो एक भी ग्रास नहीं लेगा, 15 ग्रास की जगह एक एक कम करता गया और कुछ भी नहीं लिया, भूख उपवास किया। अब इसके बाद में शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में भी वैसे ही एक एक करके कला बनती है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक कौर लेगा, जिसकी उसकी मात्रा होती है उतना लेगा, द्वितीया को 2 कौर लेगा, फिर तृतीया को 3 लेगा, ऐसे पूर्णिमा जब आएगी 15वां दिन उस दिन 15 कौर ले लेगा, उसके बाद में सामान्य भोजन पर। तो क्रमशः घटाते जाते हैं और क्रमशः बढ़ाते जाते हैं, ये चंद्रमा के पूरे चक्र के समान हो गया, इसको चंद्रायण व्रत कहा गया। ये भी तपस्या, आहार का संयम है, वो भी तपस्या के अंतर्गत आता है, कृच्छ्र भी आहार से संबंधित है, ये भी आहार से संबंधित है। तीसरा संतपन व्रत कहा गया, जिसमें कुछ द्रव्य होते हैं उनका सेवन करते हैं, एक दिन उनका सेवन करते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, वो कितनी बार करेगा ये तो अलग विषय है, एक दिन लेते हैं एक दिन उपवास, एक दिन लेते हैं फिर दूसरे दिन उपवास, ऐसे, लेकिन एक दिन लेना एक दिन उपवास करना ये संतपन व्रत हो गया। तो उसमें जो चीजें ली जाती हैं उसमें पंचगव्य की चीजें हैं, यानी गोमूत्र, गोबर, दूध, गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि और कुशा का जल, कुछ घास होती है उसका जल रस निकालें या उसका काढ़ा बना लें, उसका पानी होता है, इनकी भी मात्रा निर्धारित की गई है, इतना इतना माशा इनको लिया जाता है। तो उसके लिए गोमूत्र को 8 माशा, गोबर 16 माशा दुगना यानी, और गोदुग्ध 12 माशा, गोघृत 10 माशा, 1 माशा मतलब लगभग 1 ग्राम, 1 माशा 1 ग्राम के लगभग मान के चलें, जैसे 1 ग्राम से थोड़ा कम होता है वो 952-954 ग्राम होता है, आज का जो ग्राम है नहीं मिलीग्राम, एक ग्राम में, अच्छा वो किलो में हो गया, ठीक है, अपना जो किलो और सेर का अंतर है, तो माशा थोड़ा छोटा होता है, तो सेर जो होता है वो सेर है 952-954 ग्राम का होता है, और किलो होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, ये माशा मतलब 1 ग्राम, लगभग 1 ग्राम मान के चलिए। 12 माशे का 1 तोला होता है, आजकल 10 ग्राम का 1 तोला माना जाता है, उसमें थोड़ा अंतर है, तो थोड़ा छोटा है मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, माशा थोड़ा छोटा है, लेकिन सामान्य समझ के लिए आप ग्राम या मिलीग्राम ml ये अर्थ ले सकते हैं। तो इनको मिला करके और उसका सेवन करते हैं, और कुछ नहीं सेवन किया जाता है, तो ये संतपन व्रत है। ये व्रत कुछ बताए गए, ये तप के अंतर्गत आएंगे। अब तप में मुख्य लक्षण क्या है, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का सहन करना, और द्वंद्व ये हो गई भूख प्यास इसके साथ साथ और भी चीजें जोड़ी जाती हैं, हानि लाभ, मान अपमान, ये भी द्वंद्व है, हानि होना लाभ होना जुड़े हुए हैं, और मान और अपमान, सम्मान या अपमान, ये भी साथ में जुड़े हुए हैं, इनको भी लिया जाता है, इनका सहन करना। एक योग के विषय में प्रचलित है श्लोक, समत्वम योग मुच्यते, समत्व का भाव, हानि लाभ मान अपमान में तटस्थ रहना, सम रहना, योग का भाग है, ये भी एक तपस्या है, साधना है ये भी, और इस पर बहुत जोर भी दिया जाता है, कुछ लोग इसी की साधना करते हैं और इसको वो साधना के फल के रूप में भी देखते हैं कि साधना कितनी है, वो इससे पता लगेगा कि वो कितना मान अपमान से ऊपर उठा हुआ है, सहन कर सकता है, कितना हानि लाभ को सहन कर सकता है, सम स्थिति में रहना, उस समत्व को योग कहा जाता है। तो वो बात यहां पर है, और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि ये समत्व तप के अंतर्गत आया है, तप के अंदर, और तप नियमों के अंदर आया है, और यम और नियम की अपेक्षा यम मुख्य है, ये समत्व होना चाहिए, बहुत रखना चाहिए, कोई दो राय नहीं, और अब जो इसको रख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंचा है, और वो करना ही चाहिए, उसका निषेध नहीं कर रहा, लेकिन आजकल कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो गई है समाज में, इस समत्व को ही बहुत अधिक ऊंचा माना जाता है, हानि लाभ मान अपमान को सहन करना, जैसे कि योग की ये अकेली कसौटी है, कुछ भी हो गया अपने को समान रखो, योग दर्शन में भी ये सम्मिलित हो रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये नियम के अंतर्गत है। आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे बहुत सारे, ऐसे यम नियम यमों का भंग करेंगे लेकिन समत्व का भाव रखेंगे, ठीक है, जितनी हिंसा की हो गई ठीक है, इतना मिल गया उतना ठीक है, कम आया तो कम सही, ज्यादा आया तो ज्यादा सही, बड़ा हाथ मार लिया तो भी समय, और बड़ा नहीं हाथ लगा कम है तो भी समय, अधिक माल हाथ लग गया, अधिक रिश्वत हाथ लग गई, सम है, समत्व मात्र नहीं, समत्व भी होना चाहिए, वही संतोष के अंतर्गत भी वो चीज आ रही है हमारी, संतोष में भी वो जो है उसमें संतुष्ट है, जुड़ी हुई बातें, लेकिन ये नियमों में ये हमेशा ध्यान रखना है। एक वो व्यक्ति है जो यमों का पालन कर रहा है, ठीक है वो स्थितियों में सम नहीं रह पाता है, एक दूसरा व्यक्ति है वो सम तो रह रहा है लेकिन यमों का पालन नहीं कर रहा है, तो यदि उन दोनों में तुलना करनी हो या हमें अपना निरीक्षण करना हो तो हमें यमों को अधिक महत्ता देनी है, वो व्यक्ति अधिक ऊंचा साधक है जो यमों का पालन कर रहा है, दूसरा यमों में शिथिल है लेकिन वैसे सम रहने का प्रयास कर रहा है, योग की अधिक ऊंची स्थिति नहीं है वो, और ना अधिक वो जा सकता है। हाँ, जिसका यम नियम दोनों सदर है उसमें भी समत्व देखा जाएगा, जिसने यमों का भी पालन किया है कर रहा है और समत्व पे भी है वो तो ऊंचा है ही, वो तो इन दोनों से ऊंचा है, लेकिन यदि हमें कहीं तुलना करनी हो, हमें देखना हो कौन अधिक चल रहा है, हम अपने ऊपर भी परीक्षण करें, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो समत्व है ये तप के अंतर्गत आता है, तपो द्वंद्व सहनम, मान अपमान हानि लाभ को सहन करना, ये तप के अंतर्गत आता है, इसी में संतुष्ट नहीं हो जाना है कि मैंने तो ये स्थिति बना ली है अब कुछ देखना ही नहीं है, बस संभाव रखें, कईयों की साधना ही केवल इसी पे केंद्रित है। हाँ, अंतिम जो समत्व है वो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन प्रारंभ में भी समत्व और बस केवल समत्व उसी पे रहते हैं, बाकी पे ध्यान नहीं देते, जो वहां कमी रह जाएगी, बाकी पे भी ध्यान देते हुए, यमों पे ध्यान देते हुए जब हम समत्व की बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको हमें करना चाहिए। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ विकुसादर विवादी ओम शांति।